ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हमने कथा में सुना था कि भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों के वचन को सत्य साबित करने के लिए ये पूरी लीला किए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद् अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम्। तीन अलग अलग भक्तों की वाणी को सच स्थापित करने के लिए भगवान ये लीला किए। भगवान की कोई भी लीला में ये एक प्रमुख कारण होता है कि वो अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं या किसी प्रकार से अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। आप कोई भी लीला देख लीजिए, उसका बहिरंग या अंतरंग कारण यही होगा। अधिकतर अंतरंग कारण यह होता है कि भगवान अपने भक्तों को या तो प्रसन्न करना चाहते हैं या उनका गुणगान करना चाहते हैं। तो इस लीला में भगवान अपने तीन शुद्ध भक्तों के वचन को सच साबित करने के लिए इस प्रकार के रूप में आए। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान को इस प्रकार का रूप क्यों लेना पड़ा आने के लिए। तो जैसा आप लोग ने सुना था कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान मांगे थे, क्योंकि पहले तो वो वरदान मांग रहे थे जिसमें वो अमर हो जाएं। अब ब्रह्मा जी खुद भी किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाई। अब वो वरदान जो ब्रह्मा जी नहीं दे सकते थे वो मांगने का प्रयास किया। ये आश्रित वृत्ति होती है। आश्रित प्रवृत्ति का एक लक्षण है कि उनको अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास होता है कि हम अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक इसी प्रकार की हिरण्यकशिपु की ही परंपरा में आ रहे हैं, जो कि ये सोचते हैं अपनी बुद्धि से भगवान को सब्स्टिट्यूट, भगवान को नकार सकते हैं, भगवान की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। मुक्ति केवल विष्णु प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु चाहते थे विष्णु भी नहीं चाहिए लेकिन मुक्ति भी चाहिए। अभी मुक्ति चाहिए तो विष्णु के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वे चाहते थे नहीं, मैं विष्णु के पास भी नहीं जाऊंगा और मुक्ति भी प्रदान करूंगा। ये आश्रित प्रवृत्ति होती है, जिद करते हैं, जो हमें चाहिए वो चाहिए, चाहे सही है चाहे गलत, क्योंकि हमें चाहिए। तो जबरदस्ती, एक्चुअली अगर हिरण्यकशिपु समझते कि नहीं मुक्ति मेरे को नहीं मिल सकती ब्रह्मा जी से, कोई बात नहीं, नहीं मांगता मैं, तो इस प्रकार से कुछ होता नहीं। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी कि ठीक है तुम मुक्ति नहीं दे सकते, मैं ऐसा वरदान मांगू अपनी बुद्धि से कि मुक्ति के बराबर ही होएगा वो। और उन्होंने, हमने देखा कितने सारे अलग अलग प्रकार के वरदान उन्होंने मांगे। तो एक उनके वरदान को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसको पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण इस प्रकार से नरसिंह रूप लेकर आए। तो ब्रह्मा जी के वचन को पूरा किया नरसिंह रूप लेकर। एक्चुअली बाद में ब्रह्मा जी के पास सब देवतागण गए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा वरदान दिया, जब जानते थे आप ये बदमाश है, ये आप ही के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध जाएगा। वो बोले मैं क्या करता, मैं लाचार था। तो ये देवी देवताओं की लाचारता है। मतलब आप जैसे दुकानदार के पास कुछ जाते हैं और उसको पैसा देते हैं कुछ मांगने के लिए, और पैसा अगर सही कीमत है वस्तु की, वो वस्तु चाहे आपके लिए अच्छी है चाहे बुरी, दुकानदार को देनी पड़ती है। इस बात को अगर हम समझें गंभीरता से तो कभी हम देवी देवताओं के पास वरदान मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि देवी देवताओं के पास वरदान मांगने में डेंजर है कि हमने कुछ गलत वरदान मांग लिया तो वो दे देंगे अगर हमने उसकी सही कीमत चुकाई है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। तो भगवान के पास वरदान मांगना बहुत सेफ है, क्योंकि हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान के साथ सामने रोज जाके प्रार्थना करते हैं और हमारे को ये नहीं पता कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। कुछ भी प्रार्थना करते जो हम सोचते हैं सही है, बहुत खतरनाक होता है ऐसा। लेकिन भगवान के पास जाकर ऐसी प्रार्थना करना सेफ है, क्योंकि अगर वो प्रार्थना हमारे लिए अच्छी नहीं है तो भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन यहां ब्रह्मा जी लाचार थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वो सब किया था जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, ये ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता के रूप में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जरूरी था। तो एक तो ब्रह्मा जी की इच्छा या शब्दों को पूरा करने के लिए भगवान इस रूप में आए, और दूसरा जैसा श्लोक में बताया जाता है कि क्योंकि प्रहलाद ने खंभे की ओर देखते हुए बोला था कि हाँ इस खंभे में भगवान है, अभी क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया तो भगवान को उसी खंभे से बाहर निकलना पड़ा। नरसिंह लीला जो है ये केवल श्रीमद् भागवतम में ही नहीं है, केवल नरसिंह पुराण में ही नहीं है, ये बहुत अलग अलग स्थानों में अलग अलग गहराई के साथ इस लीला पर चर्चा की गई है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला को बार 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 सुनना चाहते थे, कई सौ बार सुनने के बाद भी वे इच्छा रखते थे और सुने, क्योंकि इस लीला की गहराई का कोई अंत नहीं है। एक्चुअली कोई भी लीला की गहराई का अंत नहीं है, लेकिन खासकर नरसिंह लीला, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन से दर्शाया कि बहुत विशेष है ये। इसमें भक्ति को समझने का हर वो अंग, हर वो मुद्दा चर्चा किया गया है, जिससे पूरी तरीके से समझ सकते हैं भक्त क्या है और भक्ति क्या है और भगवान क्या है। तो प्रहलाद ने क्योंकि ये हाँ बोला था, हमारे कई आचार्यगण इसको समझाते हैं कि भगवान नरसिंह देव उस पूरे हिरण्यकशिपु के राज्य के हर खंभे में थे, कि पता नहीं मेरे भक्त किधर देखते हुए मेरे को बोले कि मैं इस खंभे में हूं और फिर मेरे को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। तो भगवान तैयार थे कि जिधर भी मेरे भक्त बोलेंगे मैं उधर से निकलूंगा। जैसा गीता में भी भगवान जिधर अर्जुन ने बोला कि आप प्रथम स्थापय मे च्युत, मेरे रथ को आप लेके जाएं युद्ध के बीच में, भगवान वैसा किए। भगवान अपने भक्तों के वचन को पूरा करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो क्योंकि प्रहलाद ने इस प्रकार से बोला था तो भगवान उस खंभे से आए। और तीसरा, एक और भक्त के वचन को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह लीला किए, पता है किसका? अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है, वो है नारद जी का। एक पूरा अध्याय है नरसिंह लीला में जिसमें वर्णन आता है कि जब हिरण्यकशिपु 36,000 साल की कठोर आसुरिक तपस्या करने मंदार पर्वत पे गए थे तो उस समय सब देवी देवता बहुत घबराए हुए थे कि अभी ये एक्चुअली हिरण्यकशिपु तपस्या करने से पहले ही बहुत शक्तिशाली थे। इसका भी वर्णन अलग अलग पुराणों में है, कितने शक्तिशाली थे हिरण्यकशिपु। हमको उनकी शक्ति का आभास भी नहीं हो सकता, हमारे सोच में कोई इंसान इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना हिरण्यकशिपु तपस्या से पहले थे। और सब लोग जानते हैं, सब देवी देवता भी जानते थे कि तपोबल की क्या शक्ति होती है, और ऐसी तपस्या जैसे हिरण्यकशिपु कर रहे थे बहुत बहुत तपस्या थी। तो सब देवी देवता बहुत घबराए हुए थे कि हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहे हैं इसके फल स्वरूप जो उनके पास शक्ति इनको प्राप्त होगी उससे वो क्या करेंगे, कितना नाश करेंगे, हम सबको बहुत तकलीफ देंगे। तो कई देवी देवता सोच रहे थे क्या करा जाए जिससे कि अपनी तकलीफ को कम किया जाए, ये हिरण्यकशिपु की तपस्या को की शक्ति को कम किया जाए। तो कई बार कई सोच विचार करने के बाद इंद्रदेव ने उनके मन में एक बात आई कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु वे गर्भवती हैं और अगर हिरण्यकशिपु उतना शक्तिशाली व्यक्ति है तो उस गर्भ में जो बच्चा होगा वो दूसरा हिरण्यकशिपु बन के बाहर निकलेगा, तो क्यों ना उस बच्चे को समाप्त किया जाए। तो उन्होंने एंटिसिपेशन आगे का सोचा कि देखो केवल हिरण्यकशिपु की तकलीफ को नहीं सोच रहे थे, वो आगे का सोचे कि आगे जाके दूसरा हिरण्यकशिपु आएगा, उसका उसके साथ कैसे डील किया जाए। चलो यहां तो अभी जो कर रहा है, तो उन्होंने सब देवी देवता के साथ वे जहां कयादु थी वहां आए और उनको घेर लिया और उनको मारने का प्रयास किया। और ज्यों ही इंद्र अपने वज्र से कयादु को मारने ही वाले थे, उस समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और नारद मुनि ने तुरंत इंद्र को बोला, रुक जाओ इंद्र, तुम इस गर्भ को नाश नहीं कर सकते। अभी ये वचन नारद ने बोल दिया, तुम इस गर्भ को नाश नहीं कर सकते। इस ये कारण था एक कि हिरण्यकशिपु के इतने आघात करने के बाद भी प्रहलाद जी पे प्रहलाद तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को नारद जी की इस वाणी को सत्य बनाना था कि तुम इस बच्चे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बच्चा भगवान का शुद्ध भक्त है। कई आचार्य समझाते हैं इस समय जब नारद ने यह वचन बोला था प्रहलाद शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन अब नारद मुनि ने बोल दिया ऐसा कि इस बच्चे को तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह भगवान का शुद्ध भक्त है, तो तुम कयादु को छोड़ दो। और इंद्र देवता है, नारद मुनि की बात पर तुरंत उन्होंने विश्वास कर लिया और कयादु को कुछ नहीं किया। उसके बाद नारद मुनि कयादु को अपने कुटिया में लेके चले गए और कयादु को बोला, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत पे प्रवचन देना चाहता हूं। और तुम्हें ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोला, मैं तुम्हारे गर्भ में जो संतान है उसको प्रवचन देना चाहता हूं। और कयादु भी, उनको भी इतना विश्वास था, ये नहीं सोचा अरे जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको आप कैसे प्रवचन देंगे, लेकिन उनको ये विश्वास था इस विज्ञान पे कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो संतान किसी भी आयु में क्यों ना हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, उस बच्चे पे जो बाहर हो रहा है जो चल रहा है उसका प्रभाव पड़ता है बहुत हद तक। तो नारद मुनि की शुद्ध वाणी का कितना भयंकर प्रभाव पड़ेगा कयादु इस बात को जानती थी, इसलिए वे तैयार हो गई और वे नारद मुनि के साथ उनकी कुटीर में गई। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है किस प्रकार से नारद मुनि कयादु को और उनके गर्भ में जो बच्चे था उसको उन्होंने कई समय तक, कई सालों तक, अभी ये बात सुनने में अटपटी लगती है, जनरली स्त्री 9 महीने तक गर्भवती होती है, यहां कयादु 36,000 साल तक गर्भवती थी। इसके बारे में भी भागवतम में वर्णन नहीं है लेकिन दूसरे पुराणों में वर्णन आता है कि इससे पहले जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे तो कयादु ने वरदान मांगा था ये कि जब तक आप लौटते नहीं मुझे ये बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए, नहीं तो समाज में लोग कुछ गलत भी समझ सकते हैं कि हिरण्यकशिपु तो था नहीं तो आपका बच्चा कैसे पैदा हो गया, ये ऐसा सोचकर तो उन्होंने वरदान मांगा था। तो इसलिए अब ये कोई साधारण वरदान भी नहीं है, गर्भवती होना कोई बहुत आनंद की, आनंद इन द सेंस कुछ बहुत तकलीफ होती है शारीरिक स्तर पे, आनंद होता है कि बच्चा आएगा लेकिन जब तक वो आता नहीं तब तक बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कयादु को इसकी परवाह नहीं थी। और इस समय जब नारद मुनि ने कथा सुनाई थी कयादु को, ऐसे बतलाया जाता है कथा के अंत में प्रहलाद महाराज ने गर्भ में पूरी कथा सुनी थी और उस कथा को सुन के वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए थे, लेकिन कयादु उसको सुन के उनके हृदय में उतना परिवर्तन नहीं आया। ये बड़ी विशेष चीज है, जो व्यक्ति एक्चुअली कयादु तो सामने थी नारद मुनि के, देखती थी नारद मुनि को, उनसे सुनती थी, प्रश्न भी पूछ सकती थी, को शंख आए तो। और यहाँ प्रहलाद तो गर्भ रूप में थे, ठीक से सुनने में भी बहुत कठिनाई हो रही होगी उनको अंदर, क्योंकि अंदर का वातावरण बहुत सुनने के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। हम तो आराम से पंखे में बैठे हैं और अच्छी जमीन है और खुले अवस्था में बैठे हैं, तभी भी प्रवचन सुनने में ध्यान नहीं आता है। लेकिन देखिए प्रहलाद ये दर्शाए कथा रुचि का मतलब क्या होता है, कितनी कठिनाई में थे उस समय प्रहलाद। शास्त्र के भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है, जब बच्चा वहां के गर्भ में होता है तो कितने प्रकार के कीटाणु कीड़े मकोड़े वो बच्चे को काटते हैं, और उस समय उसकी त्वचा जो होती है बहुत कोमल होती है। जब बच्चे को कुछ कीड़े काटते हैं उसको बहुत दर्द होता है। हिरण्यकशिपु भी जब तपस्या कर रहे थे उनको भी कीड़े काट रहे थे। भागवत में पूरा डिटेल वर्णन है किस प्रकार से उनके शरीर पर कीड़ों ने एक पहाड़ बना लिया था, एंट हिल। और पहाड़ बनाने से पहले कीड़े उनके शरीर को काट रहे थे। आपको एक्सपीरियंस होगा, जब एक चींटी काटती है कूद जाते हैं हम लोग, इतना दर्द होता है एक चींटी के काटने से। और यहां एक के बाद एक चींटी काट रही थी, चींटे काट रहे थे हिरण्यकशिपु को, एक दो तीन 500 1000 2000 पूरे शरीर पर चींटे काट काट के उसके मांस को खा रहे थे। लेकिन उस तपस्या को गीता भागवतम में आसुरी तपस्या बताई गई है, क्योंकि उस तपस्या का कारण था वे शक्ति प्राप्त करना चाहते थे जिससे वो विष्णु को मार सकें, क्योंकि वो अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेना चाहते थे। तो जब अपने स्वार्थ के लिए कोई तपस्या की जाती है तो उसको आसुरी तपस्या बोलते हैं। लेकिन भागवत बताती है, नायम देहो देहा भाजाम निलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये यद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। भक्तों को चाहिए कि तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करें। जैसे आज हम लोग कुछ हद तक तपस्या कर रहे हैं, कुछ उपवास कर रहे हैं, जल नहीं पी रहे, इस समय मन बहुत विचलित होता है। मन बोलता है अरे थोड़ा सा पी लिया तो पानी पीने में क्या जाता है। भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए ना। मन ऐसा, अभी तो मन को भी थोड़ा सुने हैं, मन ने प्रवचन सुने हैं, तो मन शास्त्रिक बातें बोलता है हमको कन्विंस करने के लिए कि हमको तपस्या नहीं करनी चाहिए, इतनी भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। सारा दिन जल रखोगे, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा चलो एकादशी प्रसाद ही ले लो, इस प्रकार की बातें मन में आएंगी। क्योंकि तो तपस्या करने से एक शक्ति आती है, खासकर जब वो तपस्या हम जैसे अब नरसिंह देव को पसंद करने के लिए, प्रहलाद महाराज को पसंद करने के लिए कर रहे हैं, इस तपस्या में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। इस तपस्या को साधारण नहीं, हालांकि शास्त्रों में कई वर्णन आता है, जैसा चतन चक्रवर्ती प्रभु ने बताया था कि अज्ञानता में भी ये तपस्या कर ली जाए तो उसका भी बहुत लाभ होता है। तो ज्ञानता में ये तपस्या की जाए तो उसका बहुत बहुत लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी, इस प्रकार के अवसरों पर हमको तपस्या करनी चाहिए। थोड़ा शरीर को, मन को थोड़ा कष्ट देना चाहिए। मन को कथा सुनने में अगर इच्छा ना भी हो तो कथा सुननी चाहिए। भगवान के लिए कुछ पकवान बनाने की सेवा करनी हो तो सेवा करनी चाहिए। शरीर को एक हाथ दिन तो थोड़ा कष्ट देना चाहिए। मन बोलेगा नहीं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे और नारद मुनि से प्रवचन सुन रहे थे, ऐसा कम से कम वर्णन तो नहीं आता कि वह बहुत तपस्या जनक जीवन जी रहे थे। अब वो कठिनाई से सुन रहे थे, क्योंकि सुनते सुनते उनके मन में, उनके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गई थी इस कथा को सुनने के लिए। ऐसा आगे प्रहलाद महाराज खुद बतलाते हैं, जब उनको छंद और अमर्क पूछे एक बार कि प्रहलाद तुमको हमने ये सब बातें विष्णु के बारे में, भक्ति के बारे में तो हमने तुम्हें सिखाया नहीं, तुमने कहां से सिखाई ये सब बातें, किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारे सारे मित्रों को पूछो ये सब बातें नहीं पता, तुमको कहां से पता है ये सब बातें, कौन आता तुमको इसे बताने के लिए। तो स्वयं प्रहलाद महाराज बोले, यथा भ्रम्यत अयोघम मन स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे भिद्यते चेत चक्रपाणे यदृच्छया। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं प्रहलाद। वे कहते हैं जिस प्रकार से ना चाहते हुए भी लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता रहता है, लोहा नहीं प्रयास करता कि मैं चुंबक की ओर जाऊं, चुंबक जैसे ही आती है अपने आप लोहा खिंचा चला जाता है, उसी प्रकार तथा मैं भिद्यते चेतः चक्रपाणि यदृच्छया, जैसे ही भगवान का स्मरण मेरे मन में आता है मेरी चेतना अपने आप खिंची चली जाती है भगवान की ओर, और मेरा भगवान के बारे में चिंतन हमेशा चलता रहता है, तो हमेशा मेरी चेतना भगवान में ही लीन रहती है, हमेशा मैं भगवान के बारे में ही, उनके बारे में, उनकी सेवा के बारे में और उनके बारे में ही बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। इस प्रकार की ये एक शुद्ध भक्त की लाचारता है। जिस प्रकार से गोपियां चाहती थीं, कभी कभी वो प्रैक्टिस को प्रयास करती थी कि हम नहीं स्मरण करेंगे इस कृष्ण का, इस प्रकार से ये हमको छोड़ के चले जाता है, ये काला ये व्यक्ति है, और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, उनकी लीलाओं को गलत साबित करने के लिए उनके बारे में, कि उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी कृष्ण को कभी नहीं सोचेंगे, कृष्ण के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, और कृष्णा कृष्णा करते रहती हैं वो, लेकिन भूल नहीं पाते। जिस प्रकार से हमारे जितना हम इंद्र तृप्ति के प्रति स्वाभाविक, जब इंद्रिय भोग की वस्तु आती है हमें प्रयास नहीं करना पड़ता ये कि अभी हम इसको भोग करेंगे, अभी इसको अपने आप मन उस भोग वस्तु के प्रति जाता है, उसी शक्ति से, उसी शक्ति जैसे काम और प्रेम ये दोनों उतनी ही शक्तिशाली वस्तुएं हैं, एक दूसरे हालांकि ऑपोजिट हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। इस प्रकार के आकर्षण के कारण प्रहलाद महाराज को तपस्या नहीं हो रही थी मां के गर्भ में सुनने के लिए, लेकिन कयादु को कोई तकलीफ नहीं थी, अभी भगवान ने इसी तपस्या को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कयादु इतना सब प्रवचन सुनने के बाद भी उनके मन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों? इस बात का कि पुष्टिकरण प्रहलाद महाराज ने ही अलग अलग स्थानों पे, जब हिरण्यकशिपु ने कई प्रश्न पूछे प्रहलाद को कि तुमने स्कूल में क्या सीखा बतलाओ, उस प्रश्न के दो बार पूछा हिरण्यकशिपु ने, उन प्रश्नों के उत्तर में, और बाद में जब नरसिंहदेव भगवान आ गए थे उनके से, उनसे जो प्रार्थनाएं करी प्रहलाद महाराज ने, उन प्रार्थनाओं में भी इस बात को बार 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 दोहराया गया है प्रहलाद महाराज ने, वो है भौतिक आसक्ति। कयादु जो थी वे हालांकि प्रवचन सुन रही थी लेकिन उनका मन था कि प्रवचन के बाद मैं क्या करूंगी, प्रवचन के बाहर क्या हो रहा है, वहां क्या करना है, किससे मिलना है, किस, खासकर पुराणों में वर्णन आता है वे अपनी पति के बारे में सोच रही थी, हालांकि उनका पति ऐसा था हिरण्यकश्यपु जैसा, लेकिन फिर भी वो इतनी आसक्त थी, मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा होगा, तो क्योंकि उनका मन प्रवचन में नहीं था, उनका मन अपने पति में था, तो हालांकि साक्षात श्रील नारद मुनि जो भक्ति के शक्ति के स्वरूप हैं, भक्ति की शक्ति उनके पास है, उनसे भी प्रवचन सुनने के बाद भी कयादु को के हृदय में परिवर्तन नहीं आया। तो प्रवचन सुनने का प्रभाव दो दो चीजों पर आधारित है, प्रवचनकर्ता की शुद्धता पे, उसके भाव पे, और सुनने वाले की भाव पे भी निर्भर है। दोनों के भाव ठीक होना चाहिए। पिपा जी बोलते हैं जिस प्रकार से एक उपजाऊ जमीन और एक पौष्टिक बीज दोनों अगर साथ में आते हैं तो पेड़ उगता है, अगर बंजर जमीन में एक अच्छा सा बीज भी डाल दिया जाए तो पेड़ नहीं उगेगा क्योंकि जमीन ही बंजर है। उस प्रकार से कयादु भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भक्ति में ध्यान लगता ही नहीं, प्रवचन में ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि ध्यान जा रहा है प्रवचन के बाद क्या करना है या प्रवचन से पहले क्या हुआ था। प्रवचन छोड़कर बाकी सारी चीजें मन में चलती हैं तो प्रवचन सुनने का एट द मोस्ट कुछ सुकृति मिलेगी, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति कर सकता है, जिस प्रकार का आकर्षण, जिस प्रकार का हृदय में परिवर्तन हो सकता था, वो नहीं होता फिर। तो प्रहलाद महाराज हालांकि मां के गर्भ में थे, कठिन परिस्थिति में थे, ठीक से सुनने की परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सुनने की आतुरता थी कि मेरे को सुनना है। और इधर कयादु हालांकि प्रवचन बाहर से सुन रही थी नारद मुनि के सानिध्य में, एक दिन दो दिन नहीं कई सालों तक, लेकिन फिर भी इतना साल एक शुद्ध भक्त का संग किया लेकिन अंतर नहीं पड़ा चेतना में। और उधर प्रहलाद को देखिए, इतनी कठिनाई में भी थे फिर भी अंतर पड़ गया। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और उत्तरा, परीक्षित महाराज ने भी वही श्रीमद भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी से जो उत्तरा ने सुनी थी, लेकिन उत्तरा पूरे प्रवचन सात दिन के बाद परीक्षित महाराज को बोलते, बताओ संक्षिप्त में तुमने क्या सुना, मैं कुछ नहीं सुन पाई, कुछ नहीं उनको याद था, कुछ नहीं समझ में आया उनको, प्रवचन में बैठी थी वो लेकिन नहीं समझ में आया। उसी प्रवचन में परीक्षित महाराज भी बैठे थे लेकिन वो सब कुछ समझ गए, इतने हद तक कि जब वो तक्षक सांप आया उनको मारने के लिए वे भयभीत नहीं थे, उस समय भी कथा सुन रहे थे वे, ये नहीं कुछ तैयारी करूं भगवान का स्मरण करने, बस भगवान की कथा ही सुन रहे थे वो, इतना विश्वास था श्रवण शक्ति पे उनको कि मैं श्रवण करते करते मैं शरीर भी छोड़ दूं तो जिसका श्रवण कर रहा हूं उसी के धाम जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तरा को, क्योंकि उसका मन, मेरा बेटा मर जाएगा, छह दिन बचे हैं, पांच दिन बचे हैं, दो दिन बचे हैं, एक दिन, अरे मेरा बेटा मर जाएगा, आसक्ति अपने बेटे में थी ना कि भगवान में, तो कुछ समझ नहीं आया। हालांकि उनके बेटे ने फिर से पूरी भागवतम दोबारा से संक्षिप्त में बृहद भागवतामृत के रूप में सुनाई जो उत्तरा ने सुनी ढंग से, लेकिन ये एक बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि कयादु ने इतनी सरलता से, कयादु चाहती तो शुद्ध भक्त बन सकती थी और नारद मुनि के प्रवचन का लाभ ले सकती थी, नारद मुनि के संग का लाभ ले सकती थी, प्रवचन के अलावा भी नारद मुनि वहीं थे, नारद मुनि के घर पर ही रह रही थी वो, तो उनकी कुटिया में ही रह रही थी, कितना सब कुछ सीख सकती थी नारद मुनि से, कैसे भक्ति करनी, प्रवचन के अलावा भी कितनी और बातें भी सीख सकते हैं भक्तों से, सब कुछ सीख सकती थी, लेकिन उनका मन अपने पति में था और नारद प्रहलाद महाराज का मन कथा में था। तो कथा को सुनने के लिए कोई भौतिक ऑब्स्ट्रक्शन या तकलीफ को वो नहीं है, जो भौतिक चीज को तकलीफ नहीं दे सकती भगवान के बारे में आकर्षण पैदा करने के लिए। ये नहीं कह सकते कि हम ठीक से हमें सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से हमें जैसे हम शरीर हमारा बूढ़ा होता रहता है, चीजें याद नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी अवस्था में हम भगवान के बारे में सुनने में अगर रुचि रखते हैं या जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा है कि हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वी शुड वॉन्ट अ रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन आवर हार्ट। कथा सुनने के बाद हमको चाहिए कि हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ऐसा भाव हृदय में अगर हो प्रवचन सुनने से पहले तो परिवर्तन आता है, भगवान उस इच्छा को देखकर हृदय में परिवर्तन देते हैं। भले ही उस प्रवचन में ऐसी कुछ बात नहीं थी जिससे परिवर्तन हो सकता था, लेकिन भगवान उस परिवर्तन को देंगे क्योंकि हम उस परिवर्तन के इच्छुक हैं। जितने हद तक हम इच्छा करते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम किसी भी प्रवचन में बैठे जो प्रामाणिक प्रवचन है, मतलब प्रामाणिक संप्रदाय में भक्तों द्वारा बोला जा रहा है, तो किसी भी प्रवचन से हम आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त अगर प्रवचन दे तो उसका क्या कहना। तो इस प्रकार के कई मूल्यवान बातें हैं जो इस नरसिंह लीला से हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं सोचा एक थोड़े समय के लिए, मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन ये एक मेरे को बहुत हृदय में मेरे छुआ था ये बात कि कैसे हम नरसिंह देव से प्रार्थना करें आज के दिन कि भगवान कि हे नरसिंहदेव, जिस प्रकार से प्रहलाद के अंदर आपको शुद्ध भक्त से सुनने की रुचि थी, अभी हम तो अभी बहुत अशुद्ध हैं, बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं हमारे हृदय में, सुनने की रुचि भी नहीं है, लेकिन आज के दिन केवल अपनी कृपा हम इस प्रकार से हमारे पर डालें जिससे हमारे अंदर भगवान के महान भक्तों से सुनने की रुचि पैदा हो जाए। क्योंकि ये रुचि अगर एक बार आ गई, फिर उस प्रवचन सुनने से, कथा सुनने से, हर वो चीज जो भक्ति की परिपूर्णता को या हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हर वो वैष्णव गुण जो हमें चाहिए जीवन में भक्ति अच्छी तरह करने के लिए, वो कथा सुनने से हमें प्राप्त हो जाएगा। हर अनर्थ जो हमको भक्ति में बाधा डाल रहा है वो कथा सुनने से निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर कथा सुनने की रुचि नहीं है। तो हमने सोचा कि एक चीज पे हम चर्चा करें और उस भाव को लेकर हम आज के दिन बिताएं, ये प्रार्थना रखते हुए कि हे भगवान, खासकर प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें। कई हमने भक्तों से नरसिंह लीला के बारे में प्रवचन सुना था अलग अलग समय पे। कुछ लोग बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु अगर नहीं होते, इतने अत्याचारी नहीं होते, तो क्या आते हैं नरसिंहदेव? तो हिरण्यकशिपु को थोड़ा क्रेडिट तो देना चाहिए ना कि नरसिंहदेव आए, ठीक है, और प्रहलाद के कारण भी आए। ऐसा भी बोलते हैं प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं होते, अगर प्रहलाद विष्णु का स्मरण नहीं करते तो भी नरसिंहदेव नहीं आते। लेकिन दोनों के बुलाने में अंतर है। हिरण्यकशिपु ने इतना गंदा काम किया, इतना खराब काम किया कि भगवान को आना पड़ा। यानी हिरण्यकशिपु जानते थे, भगवत में वर्णन आता है, वे जानते थे कि भगवान को कष्ट देना है, सबसे ज्यादा कष्ट तो कैसे होगा। उन्होंने इसलिए प्लान बनाया था ये कि मैं भगवान को कष्ट नहीं दूंगा, मैं भगवान के भक्तों को कष्ट दूंगा। ऐसा हिरण्यकशिपु ने भी शास्त्र पढ़े थे, उनको भी इतना ज्ञान था कि भगवान को अपने से ज्यादा प्रिय उनके भक्त हैं। तो उन्होंने इसलिए जब प्लान बनाया था, उनको यह बताया गया था कि आप भगवान के भक्त यानी ब्राह्मणों को अत्याचार उन पे अत्याचार करो, उनको मारो। तो हिरण्यकशिपु ने खराब काम करके भगवान को आने पे मजबूर किया, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद ने ऐसी सेवा करी, भगवान का ऐसा स्मरण किया कि भगवान प्रेरणा प्राप्त करके, भगवान अपने शुद्ध भक्त के प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके, वो भी एक प्रकार की मजबूरी है, लेकिन वो प्रेम पूर्वक प्रेम वाली मजबूरी है, उसमें आना पड़ा करके नहीं आना पड़ा, वो आना चाहते थे अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त को सुरक्षा देने के लिए। अपने सुरक्षा भी क्या, उन प्रहलाद को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन बस अपने भक्त को आनंद देने के लिए, अपने भक्त को ये ऐसे नहीं कि भगवान नरसिंह देव अगर नहीं आते तो हिरण्यकशिपु शायद आज उस दिन भगवान प्रहलाद को मार डालता। ऑलरेडी हिरण्यकशिपु का अहंकार तो नष्ट हो गया था, भागवत में वर्णन आता है। एक समय आकर हिरण्यकशिपु बोले कि तुम हो कौन, कैसे तुम इतने शक्तिशाली, तुम मैं अमर का वरदान मांग रहा था लेकिन लगता है अमर तो तुम हो, मैं इतना प्रयास किया तुमको मारने का, तुम मर ही नहीं रहे, लगता है तुमको मारने के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। ऐसा हिरण्यकशिपु ने पहले ही बोला। इससे पहले नरसिंहदेव आए थे, उनको यह आभास हो गया था। तो दोनों में अंतर है। एक ऐसा खराब काम, जैसे पुलिस में इतना व्यक्ति गंदा काम करे सारी पुलिस परेशान हो जाए, फिर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक परेशान होके, और वे अभी क्या करें इस गुंडे के साथ, इसको कैसे खत्म किया जाए, उसका सारे लोग मिनिस्टर लोग आके चर्चा कर रहे हैं। और एक कोई इतना अच्छा काम करे कि प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि भाई कौन व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा गर्व का काम किया कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व हिम इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहें। तो हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा कुछ किया कि भगवान को आना पड़ा, लेकिन वो दोनों में बहुत अंतर है। तो हाँ, भगवान हिरण्यकशिपु के कारण भी नरसिंहदेव आए, लेकिन वो मेन कारण नहीं था, क्योंकि भगवान बिना आए भी हिरण्यकशिपु को मार भी सकते थे और प्रहलाद को सुरक्षा भी दे रहे थे। भगवान जब पहाड़ से फेंका गया प्रहलाद को, तो किसने, नरसिंहदेव ने तो बचाया था। तो हर क्षण पर नरसिंहदेव सुरक्षा प्रहलाद को दे रहे थे। और प्रहलाद को नहीं, हम सबको भी विश्वास होना चाहिए, जैसा चैतन्य चक्रवर्ती प्रभु बता रहे थे, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह। बस ये विश्वास की बात है, हमेशा भगवान नरसिंहदेव हमारे साथ हैं। क्यों? हमारे भक्ति के कारण नहीं। कभी हमें भूल से ये नहीं सोचना चाहिए हम इतने अच्छे भक्त हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे हमको सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ये इच्छा प्रकट की है कि मेरे भक्तों को जब भी कष्ट हो। ये प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया नरसिंह आरती का कंसेप्ट। पहले परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के टाइम तक ऐसे कोई था नहीं कि नरसिंहदेव का इतना उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना, उनको स्मरण करना, इतना ज्यादा नहीं था। नरसिंह चतुर्दशी बनाई जाती है बस इतना तक, लेकिन नरसिंह आरती को प्रभुपाद जी ने बोला हर मेन आरती के बाद, मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती होनी चाहिए, गौर आरती के बाद नरसिंह आरती होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उनके अनुयायी नरसिंहदेव के पास नरसिंहदेव की प्रार्थना के प्रति प्रार्थना करें। कोई भी कष्ट भक्ति में विघ्न आते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कलयुग जिस प्रकार से बढ़ रहा है, भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा आगे आने वाले समय को देखते हैं कि उसमें कितना कठिन होगा, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसकी तैयारी करी करके हमको नरसिंहदेव के प्रार्थना करने के लिए बोला। ये तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने इच्छा की है तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमको सुरक्षा देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। बस ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भगवान अपने शुभ भक्तों की शब्दों को कभी खराब नहीं होने देते, गलत नहीं साबित करने देते, तो प्रभुपाद जी के शब्दों को भी भगवान नरसिंहदेव गलत नहीं साबित करने देंगे। तो कभी भी आप लोग को भक्ति में कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ बाधा आ रही है, तो सबसे पहले हमारा मन तुरंत स्वयं आकर्ष सन्निधौ। प्रहलाद महाराज का तो नेचुरली जाता था, हमें कम से कम प्रैक्टिस के माध्यम से भगवान नरसिंहदेव के प्रति हमारा मन जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम आज के दिन तो हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को कथा सुनने की रुचि थी, कृपया हमारे के अंदर भी ऐसी रुचि आप पैदा कर दें जिससे हम भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा सुन पाएं और उनको सुनकर हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी महा उत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।